यहाँ संकलित जैनेन्द्र की पत्नी कहानी क्रांतिकारियों के अपने परिवार की दशा को उभारती है। क्रांतिकारी किसी परिवर्तन के लिए क्रांति करना चाहते हैं और उनके घर में स्त्रियां यथास्थितिवाद की नियत झेलने को विवश हैं। प्रथमतः यह कहानी क्रांतिकारियों के विरोध में लिखी प्रतीत होती है, पर इसका व्यापक संदर्भ घर की चार दीवारी में सिमटी स्त्री के मानसिक द्वंद्व से जुड़ा है। क्रांतिकारी कालिंदी चरण की पत्नी सुनंदा को अपनी नहीं सिर्फ पद की चिंता है। देर रात भोजन के लिए उनका इंतजार करना, पद के क्रांतिकारी रूप की निर्मित उसके क्रांतिकारी गतिविधियों से निरपेक्ष रहते हुए अंगीठी की आग की तरह धीरे धीरे बुझ जाने को अभिशप्त या किवाड़ की आड़ में खड़ी रहकर पद के आदेश का इंतजार करते रहना ही उसकी नियति है। क्रांतियों के पीछे एक स्त्री की संघर्ष कथा को अत्यंत संवेदना के साथ उभारती इस कहानी में पत्नी की घुटन को संकेतों और प्रतीकों से चित्रित किया गया है। जैनेन्द्र की कहानियों की विशेषता होती है कि उनके शिल्प में घटनाओं और प्रसंगों पर अधिक जोर नहीं होता, कथा तत्व तो भी क्षीण सा होता है। प्रायः उनकी कहानियां किसी विचार उत्पादन का उद्देश्य लेकर चलती हैं। वे उसकी अभिव्यक्ति के लिए पात्रों को माध्यम बनाते हैं। कहानियां प्रायः छोटी होती हैं, छोटे छोटे वाक्य विन्यास में लिखी गई। उनकी भाषा प्रायः बोलचाल की होती है। वे अपनी कहानियों की वस्तु प्रक्षेपण में रोचकता का भी बहुत ध्यान नहीं रखते। जैनेन्द्र की कहानी कला के यह प्रतिमान पत्नी में भी मिलेंगे। प्रेमचंदोत्तर युग के एक श्रेष्ठ कहानीकार यशपाल हैं। प्रेमचंद की परंपरा का परवर्ती बोध उनकी कहानियों में प्रायः विचारों के आधार पर हुआ है। प्रगतिशील चेतना को अपनी रचना दृष्टि में जिन कथाकारों ने इस परंपरा का विस्तार किया उनमें यशपाल अग्रणी हैं। कहानी के चौथे पांचवें दशक में मध्यवर्गीय समाज की विसंगतियों, विरोधाभासों और रूढ़ियों पर यशपाल की गहरी दृष्टि उनके सशक्त हस्तक्षेप की परिचायक है। उनकी कहानियों की रचना भूमि के बीच कोई विचार होता है जिसके प्रतिपादन के लिए वे कहानी का स्वरूप देते हैं। इसीलिए उनकी कहानियां सायास लेख के प्रयत्न से निर्मित होती हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्री के मूक शोषण का प्रबल विरोध किया है। यशपाल प्रगतिशील दृष्टि से स्त्री के पुरुष संबंधों को परिभाषित कर स्त्री को उसके सामाजिक और व्यक्तिगत वजूद पर रूढ़ियों और जड़ताओं के घेरे से मुक्त करने पर बल देते हैं। वे स्त्री पुरुष संबंधों की कहानियों में भी सामाजिक समस्याओं और अंतर विरोधों से जोड़कर देखने का तर्क सामने रखते हैं। यहाँ संकलित उनके बहुल कहानी संसार के बीच अपेक्षाकृत अल्प चर्चित कहानी होली नहीं खेलता का स्त्री मुक्ति के स्वप्न और यथार्थ की समकालीनता में पुनर्पाठ आवश्यक है। यह कहानी स्त्री को पुरुष की प्रतिमान घोषित हुए। भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में कहानी पत्रिका इस आंदोलन का मंच बनी। नगर कथा बनाम ग्राम कथा का झगड़ा भी चला। नई कहानी पर आरोप प्रत्यारोप लगे। नई कहानी के रोमानी रुझानों से अलग सादगी पूर्वक मध्यवर्गीय जिंदगी और प्रेमचंद की परंपरा में लिखने वाले उपेक्षित हुए मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की तिकड़ी जमी। इस दौर में कहानी को इतनी केंद्रीयता मिली जितनी प्रेमचंद युग में भी नहीं मिली थी। नई कहानी की प्रवृत्तियों के लिए परिवेश के प्रति प्रतिबद्धता, अनुभूत की प्रामाणिकता और भोगा हुआ यथार्थ जैसे मानक सुनिश्चित किए गए। ऐसे आधारभूत बिंदुओं पर नई कहानी पुरानी कहानी से अलगाई गई। नई कहानी के प्रतिमानों को लेकर कथाकारों और आलोचकों के परस्पर अंतर विरोध भी रहे हैं। उनके चलते कहानी में जो नयापन परिलक्षित हुआ वह परंपरा का विकसित रूप अवश्य था, किंतु नएपन के बिंदु भी स्पष्ट थे। नई कहानी ने कहानी में कथ्य शिल्प और भाषा की दृष्टि से परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दिए थे। इस संकलन की 8 कहानियां इसी दौर से संबंधित हैं। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेडू, जिंदगी और जोग अमरकांत, चीफ की दावत भीष्म साहनी, नन्हो शिव प्रसाद सिंह, भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई, यही सच है मनु भंडारी, कोसी का घटवार शेखर जोशी, परिंदे निर्मल वर्मा, नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि कहानियों में शामिल रही हैं। नई कहानी में फणीश्वरनाथ रेडू की उपस्थित निर्मल वर्मा जैसी पृथक और पर निर्मल वर्मा से बिल्कुल भिन्न है। कथा साहित्य में आंचलिकता का प्रवर्तन करने का श्रेय वैसे भी उन्हें ही है। अपनी रचना की कला को यथार्थ से बहुत हल्के टकरा कर एक नायाब अनुभव संसार के बीच रखने की महारत उन्हें ही हासिल है। अंचलों और आंचलिक चरित्रों की गहरी जानकारी उन्हें है। उनकी कथा प्रकृति में मोहकता रेशे रेशे में है। वस्तुतः सही अर्थों में आंचलिकता तो रेणु के यहाँ ही मिलती है। आंचलिकता का यथार्थ स्वभावतः विरोध नहीं, आंचलिकता का यथार्थ से स्वभावतः विरोध नहीं, पर रेणु के यहाँ आंचलिकता कहानी का फार्म ग्रहण करती है। यथार्थ भी आंचलिकता के साथ कभी कभी बाई प्रोडक्ट बनकर आता है, किसी वैचारिक या दृष्ट परक चेतना के स्तर पर नहीं। रेणु इसी अर्थ में विशुद्ध आंचलिक कथाकार हैं, जिसकी कसौटी उनकी कहानियां पूरी करती हैं। नई कहानी में वे विशिष्ट इसलिए भी हैं कि उन्होंने कहानी के रूप विधान और सौंदर्य बोध को बदलकर उसे नागर और अभिजात्यता से मुक्त किया, उसे लोकाभिमुख और देशज बनाया। हिंदी कहानी में प्रेमचंद के बाद वे सर्वाधिक प्रभाव छोड़ने वाले रचनाकार हैं, जिसका प्रवर्तन प्रकारांतर से कहानीकारों की अगली पीढ़ी ने किया है। प्रेमचंद की भांति गांव के निम्न वर्गीय अवर्ण पात्र उनकी कहानियों में भी मिलेंगे, पर वे उनके आर्थिक संघर्ष, जीविषा और विपन्नता की असहाय स्थितियों के बजाय उनके जीवन और परिवेश की संपन्न सांस्कृतिक विविधता को गहराते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम रेणु की बहुचर्चित बहुप्रशंसित कहानी है। इस पर बासु भट्टाचार्य के निर्देशन में फिल्म भी बनी थी। विशेषतः यह कहानी गाड़ीवान हीरामन को केंद्र में रखकर उसके आंचलिक सौंदर्य बोध, सहजता और लोक कलाकार की विविध आंचलिक छवियों के साथ लिखी है। उसके भीतर छिपे इंसान को यह जाना है तो हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीरामन और हीराबाई की इस कहानी के मर्म की पहचान डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने की है। हीराबाई की दुनिया नौटंकी है और हीरामन की दुनिया बैलगाड़ी। हीराबाई की दुनिया में प्रेम एक नाटक करने वाले होंगे, प्रेम करने वाला कोई नहीं। अनुभव ने उसे सच्चे प्रेम की दुर्लभता अतएव महत्ता को समझा दिया होगा। हीरामन के जीवन में इसकी कोई संभावना नहीं है, संभावना हीराबाई के जीवन में भी नहीं है। इस विषय में दोनों का जीवन रेगिस्तान है। जीवन में प्रेम का कैसा स्रोत दबा पड़ा है और थोड़ा सा अवसर पाते ही वह कितने वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ता है, यही इस कहानी की मार्मिक भूमि है। कुछ कहानियां, कुछ विचार, पृष्ठ 57 से। कहानी यथार्थ से स्वप्न और स्वप्न से यथार्थ की यात्रा करती है, और इस यात्रा में रूप, रस, गंध, वर्ण और ध्वनियों के बिंब छोटे छोटे भावचित्र और अद्भुत कर देने वाले कथाखंड पंक्तिबद्ध होते हैं। आलोचकों ने इसकी कथा योजना को बिखरी और औपन्यासिक कहा है, लेकिन अंत में कहानी के सभी सौंदर्य मूलक उपादान कहानी की मूल संवेदना को रूपायित करते हैं। यह सब इतनी सुरुचि और कलात्मकता से संभव होता है कि कहानीकार खुद सामने आए बिना किस्सा गोई की नवीन प्रविधि और भाषा शिल्प के आंचलिक प्रभाव के सम्मोहन को एक साथ साध लेता है। यह रेणु की कहानी कला की सबसे बड़ी ताकत है। प्रायः तीसरी कसम की प्रेम कहानी के रूप में चर्चा हुई है, पर प्रेम कहानी हीरामन की है। पीठ में गुदगुदी उसे लगती है, तीसरी कसम वह खाता है। हीराबाई उसे कहीं व्यावहारिक बुद्धि की है, उससे कहीं अधिक व्यावहारिक बुद्धि की है। महुआ घटवारिन की लोक कथा मूल कथा को व्याप्ति देती है, पर हीराबाई महुआ घटवारिन नहीं है। हीरामन सौदागर का नौकर भी नहीं। नौटंकी की गुलबदन और गुलफाम का किस्सा भी मामूली रूप से मूल कथा को स्पर्श करता है, पर हीरामन हीराबाई की कहानी का अंत उन सबसे अलग यथार्थ मूलक है, जैसे स्वप्न भंग होने पर दिखती सच्चाई करुणा और त्रास से समन्वित। जो हीरामन को अकेला, असहाय और उसके स्मृति में एक दंश देकर छोड़ जाती है। कहानी की प्रायः सभी अनुगामिनी, दासी और वस समझने वाली पुरुषवादी दृष्टि के विरोध में लिखी गई थी, पर यहाँ खुले विचारों की अपनी सीमा पुरुष खुद नहीं लांग पाता। प्रेमचंदोत्तर कहानी में जैनेन्द्र और यशपाल की तरह अजय विशिष्ट कई अर्थों में है। वस्तु चयन में कहीं समानता होते हुए भी अजय में जैनेन्द्र की सहजता की तुलना में वैचारिकता का पुट अधिक है। उनकी कहानियां यायावर नायक के कारण ही नहीं, भाषा संस्कार और शिल्प की सार्थक तलाश के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यक्ति मन की जटिल स्तरों और संश्लिष्ट मनोभावों की सूक्ष्म अभ्यंजना की है। इसके लिए वे प्रतीकों और संकेतों का सहारा लेते हैं। उनकी कहानियों में कवि सुलभ संवेदनशीलता और सौंदर्य चेतना का प्रभाव स्पष्ट है। वे कविता की तरह अपनी कहानियों में भी प्रयोग धर्मी है। अजय की सभी कहानियों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक दायित्व बोध उनके यहाँ अनुपस्थित है, पर उनके चिंतनशील व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि उनकी कहानियों में अमूर्तता, रहस्य और सायास बौद्धिकता की उपस्थित पाठक को सहज नहीं रहने देती। संभवतः इसीलिए वे कहानी के प्रचलित फार्म को अपर्याप्त समझते हैं। आलोचक रमेश चंद्र शाह ने अकारण नहीं लिखा, उनकी खोज एक समग्र जीवन दर्शन की है और इसीलिए अपने रचना दर्शन में भी कोई बंधन या दबाव स्वीकार नहीं करते। इतना जरूर है कि अंततः उनकी यह गंभीर दृष्टि अपने रूपायन के लिए कहानी विधा की प्रकृति के साथ समंजस नहीं हो पाती। अजय भारतीय साहित्य के निर्माता मानव क्राफ्ट पृष्ठ संख्या 40 से। इसके बावजूद अजय प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में नई दिशा के अन्वेषक हैं। यहाँ संकलित अजय की रोज कहानी पहले गैंग्रीन नाम से छपी थी, जो उनकी कहानी कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में उल्लेखनीय है। अजय के आत्म केंद्रित और व्यक्तिवाद का आरोप लगाने वालों के लिए यह कहानी उनकी सामाजिकता से संतुलन बनाकर चलने वाली दृष्टि का उदाहरण बन सकती है। यहाँ एक परिवार में मध्यवर्गीय स्त्री की कुंठा और समाज द्वारा स्त्री को सौंपे गए हिस्से में जीने को विवश जीवन की एक रास्ता का चित्रण है। मालती की रोज घटित होने वाली दिनचर्या उसके क्रमशः व्यतीत होते जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। अजय ने इन स्थितियों को बेहद कलात्मक भाषा द्वारा मालती के मनोभावों में उद्घाटित किया है। विशेषता यह है कि घर की चहारदीवारी में स्त्री को यह जीवन सौंपने वाले पुरुष वर्चस्व पर कहानी का संकेत है। पुरुष यहाँ स्त्री के प्रतिपक्ष रूप में आलोचना का विषय नहीं, पर उसके लिए बहुत सी असहाय स्थितियों का जनक वही है, या उसका उन स्थितियों से निरपेक्ष रहना भी उसे स्त्री के विपक्ष में ही रखता है। रोज अजय के कथा बोध का सटीक रूपांकन करने वाली कहानी है। प्रेमचंदोत्तर कहानी परिदृश्य का आभा मंडल स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों तक बना रहता है। कहानी की यहाँ तक की यात्रा में किसी आंदोलनात्मक रूप के दर्शन नहीं होते। प्रसाद और प्रेमचंद की दो कथा धाराओं के विभाजन में भी यह आभास नहीं है, किंतु सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से यह विभाजन स्पष्ट हो जाता है। साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन का सूत्रपात हुआ, पर यह आंदोलन सिर्फ कहानी भर का नहीं, सभी विधाओं में चेतना को विस्तार देने वाला आंदोलन था। सहज ही इसे पीछे खड़ी हुई प्रेमचंद की परंपरा का आधार मिला। यशपाल और प्रगतिशील धारा के अन्य कहानीकारों के लेखन ने आंदोलन जैसा आभास दिलाया, पर यह कहानी का घोषित या अघोषित आंदोलन नहीं था। वस्तुतः कहानी के क्षितिज पर एक नई रचना दृष्टि का उभार सन 1950 के आसपास दिखाई पड़ा। यही कहानी का पहला आंदोलनात्मक रूप है, जो नई कहानी के रूप में चर्चित हुआ। नई कहानी आंदोलन के आरंभ के पीछे आजादी के बाद की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों और बदलते परिवेश की महती भूमिका है, जिसके प्रति प्रेमचंदोत्तर कहानी के पुराने कहानीकार उपेक्षा बरत रहे थे। नए समय बोध के नए कहानीकारों ने सजग होकर अपनी कथा चेतना का हिस्सा बनाया और कहानी के परिदृश्य पर कतिपय शिथिल पड़ती रचनात्मकता का शून्य भरने में तत्परता दिखाई। नई कहानी का कथा फलक अत्यंत व्यापक और विविध है। एक ओर नगरी मध्यवर्गीय सभ्यता में पनप रही आधुनिकता की प्रवृत्तियां पारिवारिक सामाजिक स्तर पर संबंधों के बदलाव की पहचान, व्यवस्था का पाखंड और भ्रष्टाचार, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में घर कर रही विसंगतियां और विडंबनाएं और इनके प्रति आक्रोश, तो दूसरी ओर बदलते ग्राम परिवेश की ग्राम्य कथाएं और आंचलिकता, कस्बों की जिंदगी आज नई कहानियों के कथा वस्तु में जगह बनाती हैं। कथ्यों में जितनी विविधता है उतनी ही संपन्नता शिल्प और भाषा की प्रयोगशीलता में लक्षित होती है। नई कहानी के दौर में कहानी लेखन का वातावरण निर्मित हुआ। कहानीकारों की एक लंबी पीढ़ी कहानी को मिली, साथ ही डॉक्टर नामवर सिंह, सुरेंद्र चौधरी, प्रोफेसर धनंजय वर्मा, देवी शंकर अवस्थी और मधुरेश जैसे कहानी के व्याख्याकार आलोचक सामने आए। स्वयं कहानीकार भी इस कार्य में अपनी भूमिका निभा रहे थे। नई कहानी में यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद और अलगाव के प्रभावों को भारतीय परिवेश के बीच पहचाना गया है। इनमें अधिकांश प्रवृत्तियों के दर्शन कतिपय आधुनिकता बोध और अनुभववादी कला के बीच देखे जा सकते हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों को आत्मसात करने वाली कहानियों की चर्चा विशेषतः रणनीतिक ढंग से प्रक्षेपित की गई। इन्हीं के आधार पर नई कहानी के किया है, नई कहानी के किया है, इसके साथ लोक तत्वों, बिंबों और प्रतीकों के कलात्मक संयोजन में उन्हें कुशलता हासिल है। उन्हें अपनी कहानियों को सिर्फ आंचलिक कहे जाने से गुरेज है। वे एक सीमित परिधि में बांधना मानते हैं। इसका अंदाजा उनके इस कथन से लगता है, जिससे उनकी कथा प्रवृत्ति का भी संकेत मिलता है। अक्सर संपूर्ण ग्राम कथा साहित्य को आंचलिक मानने का भ्रम हिंदी में फैला है। ग्राम कथा ज्यादा व्यापक भावभूम की वस्तु होती है, ग्राम जीवन की सभी साहित्यों की परिचित वस्तु होता है, जबकि आंचलिकता एक खास प्रकार के विशिष्ट श्रेय के जीवन से अपने को संपूर्ण संबद्ध कर देती है। उस जीवन को पूर्णतः उपेक्षित और अछूता समझकर उसके समग्र रूप का छोटे से छोटे रूप में पुनः प्रस्तुतिकरण आंचलिकता का लक्ष्य होता है। प्रत्येक ग्राम कथा आंचलिक नहीं होती, जबकि प्रत्येक आंचलिक कथा ग्राम कथा हो सकती है। आंचलिकता और आधुनिक परिवेश, डॉक्टर शिवप्रताप सिंह, कल्पना, मार्च 1965। नई कहानी में बदले संबंधों, विशेषतः स्त्री पुरुष संबंधों की कहानियां लिखने पर बहुत जोर था। नई कहानी के प्रायः सभी प्रमुख कहानीकारों के यहाँ कमोबेश ऐसी कहानियां अवश्य हैं। शिव प्रसाद सिंह इसके अपवाद नहीं हैं। उनके यहाँ ऐसी कहानियां बहुत कम जरूर हैं। नन्हो उनकी इस सीमित वर्ग की है, किंतु उनके संपूर्ण कथा संसार के प्रतिनिधि कहानियों में मानी जाती है। आज स्त्री विमर्श की बहस में इस कहानी का मूल्य नए सिरे से उभर आता है, क्योंकि इसका संबंध एक ग्रामीण स्त्री से है, जिसके साथ विवाह को लेकर छलावा हुआ, देखा किसी ने और ब्याह हुआ किसी से। अपने विकलांग पति मिश्री लाल की मृत्यु के बाद भी राम सुभग की लाख कोशिश या पश्चाताप जैसे व्यवहार के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करती। अपनी मूल संरचना में यह कहानी नन्हों के स्वाभिमान को चित्रित करती है। स्त्री के विरोध में खड़े समाज के रीति रिवाज जिन्हें स्वीकारती नन्हों का आंतरिक द्वंद और पीड़ा को गहरी विश्वसनीयता और संवेदनशीलता से उभारा गया है। पूर्व दीप्ति और आत्मकथात्मक शैली में नन्हों की आंतरिक टूटन और बिखराव को अभिव्यक्त करती इस कहानी में अंतर्मुखता से पर्याप्त बचकर बहिर्मुखता है। स्त्री के लिए बनी विवाह संस्था की आलोचना भी करती है। नन्हो स्वाभिमानी है, पर मुंह दिखाई में दिया गया रुमाल राम सुभग को लौटा देने के बाद वह द्वंद्व में खड़ी एक स्त्री भी है। नन्हो प्रेमचंद युग में नहीं, नई कहानी के दौर में लिखी गई है। कहानी के अंत में प्रतीक और संकेत का सार्थक प्रयोग उल्लेखनीय है। राम सुभग ने रुमाल ले लिया, नन्हो उसका जाना भी न देख सकी, आंखें जल में तैर रही थी, दिए की लौ जटामासी के फूल की तरह कई फांकों में बंट गई थी। नन्हो ने किवाड़ बंद कर लिए, पर साकल न चढ़ सकी। एक स्त्री, खास तौर से ग्रामीण स्त्री के जीवन के अंतर विरोधों की दृष्टि से यह हिंदी की मूल्यवान कहानी है। नई कहानी की अंतर्वस्तु में नया आयाम जोड़ने का श्रेय हरिशंकर परसाई को है। वे लेखन को सामाजिक कर्म मानते हैं। उनकी तात्कालिकता से वैचारिक प्रतिबद्धता है, साहित्य की शाश्वत भूमिका में उनका विश्वास नहीं। उन्होंने अपने लेखन में व्यंग्य की सृजनात्मक संभावनाओं को प्रमाणित किया है। उनकी कहानियां आजादी के बाद के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में घुसपैठ कर रही विरूपताओं, विसंगतियों और विडम्बनाओं को लक्षित करती हैं, जो प्रायः आम इंसान के विरोध में पनप रही थी। वे अपनी कहानियों में व्यवस्था की विभिन्न विकृतियों को उभारते हुए मनुष्य की पीड़ा, अन्याय, अभावों और शोषण के पक्ष में खड़े होते हैं। अपनी अंतर्वस्तु का स्वरूप वे व्यंग्य चेतना से गहराते हैं, लेकिन वह हल्का और उथला नहीं, कारुणिक संवेदना उपजाता है। परसाई की मूल चेतना उन्हें प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ती है। कहा जा सकता है कि परसाई ने अपने जातीय गद्य की धार से हिंदी कहानी में प्रेमचंद की दृष्टि का अगला मुकम्मल प्रस्थान दिया। प्रेमचंद की परंपरा में लिखने वाले अन्य कहानीकारों ने तो व्यंग्य की अंडर टोन का इस्तेमाल किया है, परसाई के लिए तो व्यंग्य कहानी का रूप है, बल्कि रूप से अधिक रूपायन फॉर्मेशन है। शिल्प तो कथ्य के अनुरूप अपनी राह खोज ही लेता है। उनकी कहानी कला पर आलोचक मधुरेश का कहना उल्लेखनीय है। आकार की दृष्टि से उनकी कहानियाँ छोटी होती हैं। वे कथानक की पुरानी और स्वीकृत मर्यादा को नकार कर आगे बढ़ती हैं। अपने कथ्य की सघनता के कारण वे शिल्प की मोहताज नहीं हैं, बल्कि कथ्य के अनुरूप ही अपना शिल्प भी वे स्वयं खोजती हैं। इतिहास, पुराण, लोक कथा, लोकवार्ता और फैंटेसी, ये सारी चीजें उनके यहाँ उनकी अपनी शर्तों पर उपस्थित हैं। काल की त्रिआयामिता यहाँ स्थगित हो जाती है और सब कुछ एक विराट वर्तमान पर आकर स्थिर हो जाता है। हिंदी कहानी का विकास, पृष्ठ 107 से। परसाई की प्रतिनिधित्व कहानी भोलाराम का जीव बहुत पठित है और इसी छोटे फार्म में अनूठी कहानी है। इसमें फैंटेसी है, पौराणिक पात्र नारद, यमराज, चित्रगुप्त आदि हैं, पर वे वर्तमान की कथा को विस्तार और व्याप्ति देते हैं। नायक वही ऐतिहासिक आदमी भोलाराम है जो भयग्रस्त है और जिसके साथ होने का यह व्यवस्था सिर्फ ढोंग करती है। उसकी सहूलियत उसकी रक्षा के लिए नहीं, उसे छलने के लिए पेंशन की बाट जोहते जोहते भोलाराम की जान चली गई। आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, इस कहानी में सिर्फ अनिश्चय अलगाव ही नहीं व्यंजित होता है, भय ही नहीं उपजता, क्रोध और घृणा की तीव्रता विशिष्टताओं को संजोए यह रेणु की नहीं हिंदी की उत्कृष्ट प्रेम कहानियों में अविस्मरणीय है। नई कहानी में प्रेमचंद की परंपरा के सशक्त कहानीकार अमरकांत हैं। वे नई कहानी के बीच होकर भी उसके रोमानी और अनुभव बहुल संसार से असंपृक्त रहे। इसी असंपृक्ति में उन्हें विशिष्टता प्रदान करती है। उन्होंने सादगी और गंभीर व्यंग्यपटता से अपनी आसपास की जिंदगी पर कहानियां लिखी हैं। उन्होंने मध्यवर्गीय या निम्न वर्गीय जीवन और परिवेश के चरित्रों को अगाध सहानुभूति से उभारा है। उनके कथ्य गहरी और विश्वसनीय संवेदना से उपजे हैं। कुछ देर से ही सही अंततः उनकी कहानियों का मूल्य पहचाना गया। अमरकांत को प्रेमचंद की परंपरा का प्रगतिशील दृष्टि के प्रति गहरा लगाव है, इनके लेखकीय बोध को पुष्ट किया है। इसी बोध पुष्ट दृष्टि ने उन्हें अपने परिवेश से रजुआ जैसे उपेक्षित पात्र पर जिंदगी और जोक कहानी लिखने की प्रेरणा दी है। विचारधारा के रचनात्मक उपयोग की कला अमरकांत की विशेषता है। प्रगतिशील कहानियों के पात्रों की तरह रजुआ क्रांतिकारी नहीं, चुपचाप शोषित होता रहता है। प्रगतिशील आशय उनके यहाँ उतने स्थूल नहीं है, फैशन या फार्मूला नहीं है। जिंदगी और जो कहानी में रजुआ की जिजीविषा को उतनी ही वास्तविकता से चित्रित किया है। मध्यवर्गीय समाज की के बीच वह लगभग फालतू और गैर जरूरी है। वह ज्यादा से ज्यादा नौकर है जिसका जब तक शोषण किया ही जा सकता है, मध्यवर्गीय स्वार्थों के लिए ही वह उपयोगी है, पर उसकी जिंदगी की जरूरतें इतनी अल्प है कि वह इस अमानवीय हो गए समाज से भी पूरी करवा लेता है। अपनी जीवन रक्षा के लिए वह जरूरी रस खींच लेना जानता है। उसके लिए सारी स्थितियां जिंदगी की विरोधी हैं, पर उसकी व्यावहारिक बुद्धि या काइयापन जीने भर की जुगत ढूंढ ही लेता है। कहानीकार ने उसकी जिंदगी के सारे संदर्भों और व्यवहार को कलात्मकता और प्रतीकों से उभारा है। कुछ इस तरह की एक ऐतिहासिक सच्चाई करुणा से आप्लावित होकर सहज मानवीय संवेदना की गरिमा को प्राप्त करती है। अमरकांत की यह कहानी उनकी ही नहीं हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल की गई है। नई कहानी आंदोलन के बीच कहानीकार भीष्म साहनी की उपस्थित उन प्रमुख लेखकों में रही है जो अनुभव बहुल और आत्मपरक बोध से अलग सामाजिकता और मध्यवर्गीय चेतना को लेकर सक्रिय थे। उन्हें इस दौर में प्रेमचंद की परंपरा का सिद्धहस्त कथाकार माना जाता है। उनकी कहानियों में मध्य वर्ग की कुंठा, पीड़ा, बिखराव, रूढ़ियां और उनके स्वास्थ्य उद्घाटित होते हैं। वे विचारधारा को कहानी के उपागम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष और ढांचा खड़ा नहीं करते। उनकी कहानियां प्रत्यक्ष घटना और दृश्य पर आधारित होती हैं। उनका गद्य एक ऐसी उदात्त चमक लिए है जो जीवन से बहुत आत्मीय बनकर ही संभव होता है। वे कहानी में किसी भी अतिरंजना के विरोधी हैं। वे जीवन की वास्तविकताओं से सीधे साक्षात्कार करते हैं। कहानी के गद्य को क्या काव्योपम उपकरणों से बचाकर फिर भी उनका गद्य निरस और इतिहासात्मक नहीं होता। इसलिए आलोचक मधुरेश ने लिखा है, सुडौल और खूब पकी ईंट की खनक ही उनके गद्य की अपनी निजी पहचान है। हिंदी कहानी का विकास पृष्ठ 167 से। भीष्म साहनी की बहुचर्चित कहानी चीफ की दावत नई कहानी में आए परिवर्तन की दृष्टि से अन्य कहानियों से अधिक महत्वपूर्ण है। यह कहानी अपने कथ्य और संवेदना की प्रासंगिकता में आज भी पठनीय है। इस कहानी की माँ एक ऐतिहासिक मूल्य है जिसके प्रति नई पीढ़ी के स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित दुर्व्यवहार का चित्रण है। मध्य वर्ग में घुसपैठ कर रही मूल्यहीनता के सूचक श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी है। विशेषतः यह कहानी नई पीढ़ी के बदलते मूल्यों की आलोचना करती है। गहरे व्यंग्य से इस तरह की अंतर्वस्तु में निहित करुणा कहीं भी खंडित नहीं होती। इस कहानी को प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी की परंपरा में अगली कड़ी भी कहा जा सकता है और वृद्धावस्था की त्रासदी से भी जोड़कर देखा जा सकता है। परिवार में वृद्ध माँ की उपेक्षा और मूल्यगत पतन नई पीढ़ी की अवसरवादिता, महत्वाकांक्षा और माँ को एक फालतू सामान समझने वाली अनैतिकता का उद्घाटन तो इसका प्रमुख पहलू है ही, पर दूसरा उतना ही महत्व रखता है। माँ तो माँ ही होती है, इसी अंत इसी करुणा के साथ होता है। माँ का ममत्व और उसकी महत्ता के स्तुत्य और सम्मानित मूल्य का रेखांकन करते हुए अपने बेटे की तरक्की का निमित्त वही बनती है। नई पीढ़ी के लिए यह इसलिए भी पठनीय है कि इसमें वृद्ध जनों के प्रति मानवीय व्यवहार बरतने और उनका सम्मान करने का भाव केंद्रित है। नई कहानी में शिवसा सिंह की उपस्थित आंचलिक या ग्राम्य कथाकार के रूप में रही है। उनकी कहानियां आंचलिक होकर उसे अतिक्रमित भी करती हैं। वे सिर्फ रेणु की तरह आंचलिक नहीं है, उनके यहाँ प्रेमचंद का कथा बोध भी शामिल है। उनकी कहानियों का समन्वित प्रभाव दर्शाता है कि आंचलिकता और यथार्थवाद का मेल संभव है। स्वतंत्रता भारतीय ग्रामीण जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर विरोधों और विडम्बनाओं को देखने का आईना उनकी कहानियों में मिलता है। कथा वस्तु के साथ साथ वे कथा शिल्प के प्रति पर्याप्त सजग हैं। आरंभ से ही उन्होंने नई कहानी के शिल्प विकास में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रायः आत्मकथात्मक और पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग कहानियों में अपने घटवार में अनाज की पिसाई करके या ग्राहकों से बतिया कर अकेलेपन को भरता है। अपने रचनात्मक सरोचकारों में यह कहानी नई कहानी के रचना विधान की अनेक विशेषताएं समेटे है। मूलतः प्रेम कहानी होकर भी यह रोमानी प्रभावों से मुक्त है। पहाड़ी प्रदेश का निविड़ एकांत, पंचक्की की एक रस आवाज, प्रेम में टूटा हुआ गुसाई का अकेलापन और इसी परिवेश में उसकी पूर्व प्रेमिका लक्ष्मा का आकस्मिक भेंट हो जाना, भावुक बना देने वाली संभावित परिस्थितियों के बीच गुसाई का संयत व्यवहार उसे चारित्रिक ऊंचाई पर ला देता है। गुसाई के अकेलेपन की अनुभूति का संकेत कहानी में ही है, कोई अज्ञात, अनाम या अस्पष्ट नहीं। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सुखी नदी के किनारे यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। इस कहानी में गुसाई अपने प्रेम से विरक्त हुआ है, लक्ष्मा की हठ ने उसे अकेला बना दिया है। वह टूटा हुआ है लेकिन अपनी नियति के लिए समर्पित भी है। इस कहानी का वस्तु विधान जब कहानीकार शेखर जोशी की कहानी कला और दृष्टिबोध में ढलता है तब छोटी घटना या अनुभूतिक सामाजिक जीवन के मर्म को खोल देती है। कुछ पेज गायब होंगे। नई कहानी का जिन आधुनिकतावादी, अस्तित्ववादी और अनुभवपरक प्रवृत्तियों के आधार पर परिचय कराया गया था, निर्मल वर्मा उनके विशिष्ट कथाकार हैं। डॉक्टर नामोर सिंह द्वारा परिंदे को कहानी नई कहानी के पहली कृत होने की घोषणा के बाद निर्मल वर्मा की कहानी कला को लेकर कथा आलोचना में उभरे विवाद कभी थमे नहीं। कालांतर में उनके समर्थन और विरोध के दो खेमे बन चुके हैं। कहना न होगा कि इसके चलते भी निर्मल वर्मा विशिष्ट बन गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में निर्मल वर्मा की कहानियों का मूल्यांकन या इस परिप्रेक्ष्य को हटाकर खासा चुनौतीपूर्ण है। इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने कहानी के बहुप्रचलित फार्म, रूढ़ विषय वस्तु और भाषा शैली को जोड़कर अपनी स्वतंत्र बेहद कलात्मक खोज पद्धति की खोज की थी। उनका संबंध जोड़ना ही तो जैनेन्द्र और अजय की कहानी कला के समीप पहुंचेगा। वे उन अनुभूतियों के कहानीकार हैं जिन्हें एकांतिक, अंतर्मुखी और व्यक्तिपरक कहा गया है। समाज के कतिपय स्थूल या बाह्य यथार्थ की वास्तविकताओं का चित्रण करना उनकी कहानियों का उद्देश्य नहीं है। वे इसके विपरीत आधुनिक परिवेश में व्यक्ति के नितांत अकेले क्षणों और अनुभूतियों को परिवेश का सघन मानवीकरण करते हुए काव्यात्मकता से संयुक्त भाषाई बुनावट से संभव करते हैं। उनकी कहानियों में प्रायः मूड या मनस्थिति को गहराया जाता है। प्रायः कहानी के सारे उपादान उस विशेष व्यक्ति चरित्र के मूड में केंद्रित हो जाते हैं। परिंदे की लतिका की मनस्थिति में अतीत में खो चुके प्रेम की स्मृतियों का दंश है। इसकी अभिव्यक्ति का बारीक फॉर्मेशन कहानी में है। यहाँ भी परिवेश अनुभूतियों और स्मृतियों की वेदना को साकार करता है। परिवेश भी ऐसा कि बहुत परिचित या सामान्यतः भारतीय नहीं है, एकदम अभारतीय भले न हो, अकारण नहीं कि उनकी कहानियों को विदेशी प्रभाव की कह दिया जाए गया। यही बात चरित्रों को लेकर है। उनके नायक और नायिकाएं भारतीय हैं, पर वे जिन संकटों, संतरास या अलगाव या अनाम दंश को लेकर जीवन जी रहे हैं, वे हमारे बहुत परिचित नहीं बन पाते। यह अस्वीकार नहीं होना चाहिए कि किसी बेहद सीमित वर्ग या व्यक्ति का अनुभव संसार कहानी की चिंता का विषय न बने। वस्तुतः निर्मल वर्मा की कहानियों से अपनापन न हो पाने की समस्या उनके यहाँ हमारे बहुत परिचित और व्यक्तिगत अनुभवों या जीवन स्थितियों का अनर्जित रह जाना है। पर इतने भर से निर्मल वर्मा आपरस अप्रासंगिक नहीं हो जाते हैं। स्वयं आरंभिक दौर में वामपंथी विचारधारा से संबद्ध होकर भी अपनी कहानियों में उससे असंपृक्त रहना उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। अपनी रचना में इस चुनौती को सफलता से निभा लेने यानी विचारधारा से के कैसे भी प्रभाव से निरपेक्ष रहकर ही कहानी को नया बनाने के लिए निर्मल वर्मा विशिष्ट माने जाएंगे। उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करके नई कहानी का कोई भी उल्लेख अधूरा ही रहेगा। इस संकलन की जिन 8 नई कहानी आंदोलन से संबंधित कहानियों या कहानीकारों की चर्चा हुई है, उससे इस दौर की विविधताओं का परिचय मिलता है। वस्तुतः नई कहानी सामूहिक रचनाशीलता का प्रतिफल थी। इसकी उपलब्धियों के निर्माण में अन्य कहानीकार भी थे। संग्रह की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए यहाँ उनका उल्लेख नहीं हो सका, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे महत्वपूर्ण नहीं थे। नई कहानी को फलीभूत करने में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर सानी, मार्कंडे, विद्याधर नौटियाल, राम नारायण शुक्ल, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा श्रोवती, उषा प्रियंवदा तथा कवि कहानीकारों में धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय का योगदान कम नहीं है। इसी दौर में कहानी की परस्पर विरोधाभासी प्रवृत्तियां भी सामने आई। आंदोलन के ही भीतर भिन्न भिन्न उपधाराएं और उनका नेतृत्व या समर्थन करने वाले लेखकों के गुट भी बने, जैसा कि यहाँ प्रसंगवश पहले भी इन अंतर विरोधों और नई कहानी की विभिन्न धाराओं का उल्लेख हुआ। इनमें सभी लेखक अपने अपने सृजनात्मक स्तर पर सक्रिय थे। यह बात अलग है कि कतिपय तभी चर्चा में आ गए और कतिपय को स्वीकृत बात भी व्यंजित होती है। नौकरशाही और भ्रष्टाचार के प्रति भारतीय साहित्य के निर्माता है शंकर प्रसाद। नई कहानी के दौर में जब मध्यवर्गीय कुंठाओं और अनुभवों का कुहासा छाया था, तब परसाई ने इस धुंध को छांट कर अपने समय के बहुत परिचित इंसान को उसकी निस्संग सच्चाइयों के साथ उपस्थित किया। बहुत देर से सही उनका साधारण सी दिखने वाली कहानियों की असाधारण उत्कटता को पहचाना गया। मनु भंडारी की यही सच है कहानी त्रिकोण प्रेम की कहानी के रूप में काफी चर्चित रही। इसी आधार पर बासु चटर्जी के निर्देशन में रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनी। हिंदी में प्रेम कहानियों की संख्या कम नहीं है। यहाँ संकलित तीसरी कसम, परिंदे, कोशिका, घटवार प्रेम कहानियां ही हैं। नन्हो भी इसी दायरे में आएगी। ये सभी अपनी तरह की विशिष्ट कहानियां हैं। यथार्थ और कल्पना के बीच ये जितनी प्रेम संबंधों की कहानियां हैं, उनसे या उससे अधिक लेखकीय कला से की भी प्रस्तुतियां हैं। मनु भंडारी की यही सच है कहानी की विशेषता यह है कि वहाँ प्रेम का यथार्थ अनुभव बेहद ईमानदारी और खुलेपन के साथ व्यक्त हुआ है। स्त्री मन के भीतर संचित सच की यह अभिव्यक्ति तब नई नई पर संयम से बंधी कला के भीतर थी। दीपा अपने पहले प्रेम निशीथ को दूसरे प्रेम संजय में तलाशती है। उसका अंतर्द्वंद यही है। उसे निशीथ में संजय नहीं मिलता है और संजय में निशीथ नहीं। इस कहानी के बारे में एक लेख में मोहन राकेश ने लिखा है, दूसरे प्रेम अंतर्द्वंद की कहानियां पहले भी लिखी गई हैं, पर और इस दृष्टि से इस कहानी में कुछ नयापन नहीं है, परंतु मनु भंडारी ने जिस सहजता और साहस के साथ इस अंतर्द्वंद का चित्रण किया है और शिल्प के जिस अधिकार के साथ इसे एक क्लाइमैक्स तक निभाया है, इससे इसमें अपनी ही एक ताजगी आ गई है और लगता है जैसे कहानी कहानी न होकर दीपा के जीवन का एक सच्चा अनुभव ही है और जैसे सचमुच हम दीपा की डायरी के पन्ने ही पलट रहे हैं। कहानीकार किसी भी कहानी में यदि वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न कर दे तो वह रचना बहुत सफल रचना होती है। कथा देश मनु भंडारी पर एकाग्र, January 2009 पृष्ठ संख्या 161 से। इसे पढ़ते हुए यह प्रश्न स्वाभाविक है कि दीपा को किस प्रेम की तड़प है। ऊपरी तौर पर कहानी के अंत में प्रतीत होता है कि संजय ने प्रेम को स्वीकार कर लिया। इस निष्कर्ष को छोड़ देने में ही इसकी मार्मिकता निहित है। दीपा के द्वंद का परिहार संभवतः वही है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस कहानी के इस प्रसंग पर सटीक टिप्पणी लिखी है, पाठक को एक झटका लगता है। वह झटका इस कहानी की उत्कृष्टता और विशेषता का आधार है, जिसके कारण यह हिंदी कहानी साहित्य में अपनी जगह बनाती है। वहीं इस कहानी को असाधारणता अतएव अविस्मरणीयता प्रदान करती है। सामान्यतः संजय और निशीथ में किसी भी प्रेमिका के लिए निशीथ का आकर्षण अधिक दुर्निवार होता है। उसका मौन उसे संजय से कहीं अधिक प्रिय और विश्वसनीय बनाता है। कथा देश मनु भंडारी पर एकाग्र, January 2009 पृष्ठ संख्या 163 से। तब संजय निमित्त है, वास्तविक आलिंगन तो निशीथ का है, पर इसमें संजय का क्या दोष। संजय के लिए तो दीपा का प्रेम पहला और दुर्निवार है, भले ही वह निशीथ की उपेक्षा की प्रतिक्रियावश उपजा हो। डायरी की शैली आत्मकथात्मक ढंग से लिखी गई यह कहानी वस्तुतः दुर्लभता का उदाहरण बन गई है। इसे स्त्री मुक्ति के समकालीन प्रतिमानों के बीच पुनः गढ़ा जाएगा। शेखर जोशी ने पहाड़ के जीवन पर आधारित कुछ कहानियां लिखी, इसी आधार पर उन्हें आंचलिक कहानियों कारों की सूची में रखा गया है, पर उनकी कहानियों का संबंध व्यापक सामाजिक संदर्भों तक जाता है। उनका संबंध पहाड़ी जीवन तक नहीं, कारखानों के मजदूरों, मध्यवर्गीय परिवेश की विसंगतियों और परवर्ती दौर के उपभोक्ता संस्कृति के आतंकों का पर वास्ता रखता है। पर नई कहानी के दौर में प्रथमतः उनकी पहचान पहाड़ी जीवन के ग्राम कथाकार के रूप में उभरी है। उनकी कहानियों में प्रेमचंद की परंपरा का पारदर्शी रूप झलकता है। नई कहानी में अकेलापन कहानी के आवश्यक विधान के रूप में आया था। शेखर जोशी की विशेषता यह है कि वे उसे आधुनिकतावादियों की तरह न स्वीकार कर सामाजिकता में विसर्जित कर देते हैं। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की कहानियों में परवर्ती दौर की है, पर उनके कथा संसार की अभिन्न प्रतिनिधि कहानी है। यह उनकी वैचारिक गंभीरता और सृजनात्मक क्षमता की अपेक्षाकृत अधिक संयमित उपलब्धि है। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन ने लिखा है, कविता की नई तारीख पर अध्ययन कई दृष्टियों से न केवल महत्वपूर्ण वरम सनसनी खेज परंतु चौंकाने वाला नहीं है, जिसमें राजनीति, सत्ता, अभिजात, अफसरी, बुर्जुआजी की कई कई परतें उधेड़ कर रचनाकार ने रख दी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कहानी जितनी बार पढ़ी जाए उतने ही नए संदर्भों का पता चलता है। भारतीय परंपराएं किस तरह टूटती हैं और छद्म आयातित संस्कृत कैसे जन्म लेती है, आत्मीय रिश्ते किस तरह से पराये हो जाते हैं और मानवीय संवेदनाएं कैसे छद्म हो जाती हैं। समकालीन कहानी परंपरा और परिवर्तन पृष्ठ 97 से। कहानीकार ने इस कहानी में तथ्यों को इस प्रकार रचनात्मकता से प्रस्तुत किया है कि नारेबाजी के सतहीपन से बच गए हैं। इसमें आजादी के बाद सरकारी नौकरियों में ऊंचे पदों पर कार्यरत मध्य वर्ग की अनेक विकृतियों को खोला गया है। इसे प्रायः उनके रचनात्मक मकानों में रखा जाता है। दूधनाथ सिंह ने कहानियां लिखना अकहानी आंदोलन से पहले ही शुरू कर दिया था। उसके बाद उनके कथा लेखन का अगला पड़ाव अकहानी के बीच हुआ, जिसमें इस आंदोलन का गहरा असर स्पष्ट है। इस दौर की कहानियों में जटिल बुनावट, अमूर्तन और प्रतीक योजना के साथ कहानी का भाव बोध भी उन्हें अकहानी का प्रतिनिधि कहानीकार बना देता है। ज्ञान रंजन काशीनाथ सिंह और मधुकर सिंह जैसे राजनीतिक, सामाजिक यथार्थ संबंधों के कहानीकारों से दूधनाथ सिंह की इस अर्थ में स्थिति अलग है कि उन्होंने अकहानी के बोध को अपेक्षाकृत अधिक ग्रहण किया। इस आंदोलन के पराभव के पश्चात एक लंबे समय के अंतराल के बाद उनके लेखन का दूसरा दौर आरंभ होता है, जहां वे अपनी वरिष्ठ अनुभव दृष्टि की सक्रियता के बीच प्रभावित होने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखते। इस दौर की कहानियों में वे कहानी को अधिक व्याख्यान यथार्थपरक और समय को चिन्हित करने का कला साधन बनाते हैं। इस दौर में माई का शोक गीत, नमो अंधकारम, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन जैसी कहानियों को लेकर वे समकालीन कहानी में वरिष्ठ पीढ़ी के कहानीकार की सक्रिय उपस्थित के लिए उल्लेखनीय हैं। इन कहानियों से कहानीकार के भीतर मूल चेतना में बैठा प्रतिबद्ध कहानीकार अपने समय के अंतर विरोधों, मध्यवर्गीय छद्म के नैतिक स्खलन और संवेदनशील हो चुके स्वभाव में सहज माने जाने वाले गांव की बदरंग तस्वीर उभारते हैं। हिंदी कहानी में सातवां आठवां दशक विभिन्न आंदोलनों का दौर रहा। नवे दशक से उसने मुक्ति के स्वर उठने लगते हैं। यथार्थवादी होने की आग्रहशीलता बढ़ती है तो दूसरी ओर उसे देखने की नई कहानी कला का प्रवेश भी होता है। 20वीं सदी के अंतिम दशक तक आकर हिंदी कहानी विचारधाराओं और आंदोलनों के बने घरों घेरों को लांघती है और इस अपने समय की संपूर्ण गतिशीलता को अधिक खुला विन्यास धारण करती है। जितनी तीव्रता से सदी के अंतिम दौर में समूचा परिदृश्य बदला है, उतने ही बहुआयामी परिवर्तन कहानी की रचना प्रक्रिया में घटित हुए हैं। इसका सिलसिला नवे दशक में शुरू होकर अंतिम दशक में अपनी विविधता और विस्तार के अनेक रूपों में पुरानी और नई पीढ़ी के कहानीकारों की संवेदना और दृष्टि से प्रतिफलित हुआ है। कालक्रम की दृष्टि से दूधनाथ सिंह की धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र बीती सदी के अंतिम दशक के मध्य और उदय प्रकाश की त्रिक्ष नवे दशक के बीच प्रथमतः हंस में छपी थी। यद्यपि इन दोनों कहानियों के अंतर्वस्तु और रूप में कोई मूलभूत समानता नहीं है, पर समकालीन कहानी में अधिग्रहित लंबे फार्म की निर्मित और अभिहित यथार्थ की प्रक्रिया में दोनों भिन्न किंतु उल्लेखनीय उदाहरण हैं। साठोत्तरी कहानी में ज्ञान रंजन अग्रगण्य है। उनका रचना संसार बहुत सीमित होते हुए भी वे उस दौर के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। आलोचक सुरेंद्र चौधरी ने लिखा, एक मानव संबंधों की विडंबना की यह कहानी पूरे समय की विडंबना से गुजरती है। अमरकांत की कहानियों की तरह व्यंग में अंडरटोन ज्ञान रंजन के यहाँ मौजूद होती है। उसे समझकर ही कहानी की संवेदना के समीप पहुंचा जा सकता है। इस कहानी का कथानक मय के माध्यम से बौद्धिक जगत की अवसरवादी मानसिकता और ढोंग का पर्दाफाश हुआ है। यह कहानी गहरे निहितार्थों की कहानी है। जवरी मल्ल पारख इस कहानी को अंधेरे से अंधेरे तक की यात्रा मानते हुए इसके घटना प्रसंग पर लिखते हैं, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के विषमतादायी चरित्र को पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, उसके खिलाफ खड़े होना और उससे लड़ने वाली ताकतों के साथ जुड़ने का सवाल भी उतना ही अहम है। घंटा कहानी 67वीं कहानी में व्यवस्था की आलोचना की सीमा और उसके असली चरित्र को उजागर करती है और ऐसा करते हुए वह उस मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के चरित्र पर चरित्र की असलियत भी हमारे सामने रखती है, जो व्यवस्था विरोध के क्रांतिकारी तेवर की आड़ में उसका पिट्ठू बनने की चाह पाले हुए हैं। वर्तमान साहित्य शताब्दी कथा विशेषांक जनवरी फरवरी 2000 पृष्ठ 487 से 488। इस कहानी में घटनात्मक मोड़ न के बराबर है। कहानी का कथानायक मैं है, जो इस द्वंद्व में है कि वह कुंदन सरकार का घंटा बने या नहीं। कुंदन सरकार जो सत्ता का घंटा है, मैं के लिए सत्ता का ही प्रतीक है। यह कहानी मैं शैली में लिखी गई है आत्मालोचन करते हुए। कहानी के दौर में प्रायः इसी शैली की में कहानियां लिखी गई हैं। कम कहानियां लिखकर भी ज्ञान रंजन महत्वपूर्ण कथाकार हैं। घंटा उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूधनाथ सिंह की धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र ग्रामीण समाज की पतनशील प्रवृत्तियों से साक्षात्कार कराती है। कभी गांव नगरों की तुलना में सहजता और संवेदन के केंद्र माने जाते थे, अब उनका रूपांतरण भयावह है। अब वहाँ व्यावसायिकता मनुष्यता को रौंदकर प्रवेश कर चुकी है और एक धन प्राण नैतिकताएं पतन की पराकाष्ठा पर जा पहुंची हैं। अपराध को ही पेशा बनाने वाला शिव महतो और उसका पुत्र मरकटवा इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। शिव महतो स्त्री की खरीद बेच का धंधा करता है। व्यवसाय की हवस ऐसी है कि बाप और बेटा अपने पुत्र वधू और पत्नी को ही बेचने पर उतर आते हैं। कहानी में जो अंतिम दृश्य स्त्री की यातना का है वह आदमी और जानवर का फर्क समाप्त कर देता है। कहानी के पात्र संवेदनहीन हैं, लेकिन कहानी पाठकों की संवेदनाएं स्पंदित करती है। कहानी में अनेक संदर्भों और घटनाओं को बड़ी कलात्मकता से जोड़कर फार्म में ढाला गया है। रेणु के बाद रेणु की तरह सम्मोहन कर पाना कहानीकारों के लिए मुश्किल रहा है, पर हिंदी कहानी में यह फार्मूले की तरह चल पड़ा। वैसे इस कहानी का ध्येय यह उतना नहीं जितना यथार्थ की विद्रूपता को दिखाना है। मूलतः इस कहानी का संबंध ग्रामीण स्त्री के शोषण और यातना से जुड़ा है। बाजारीकरण के दौर में स्त्री की इच्छा बिक रही है, वह वस्तु में तब्दील हो रही है। गांव में बाजारवादी मानसिकता की घुसपैठ से अपराध कर्मियों के बीच नारी का क्रय विक्रय प्रत्यक्षतः वस्तु की तरह निर्जीव मानने वाला दुर्व्यवहार बेहद घृणित व रोंगटे खड़े करने वाला यथार्थ है। स्त्री पूजक देश में स्त्री के विरोध में खड़ा आपराधिक तंत्र ग्रामीण समाज की नग्नता को उजागर करने वाली यह कहानी चर्चा में रही है और समकालीन कहानी का प्रतिमान मानी गई है। 90 दशक के पूर्व तक हिंदी कहानी कमोबेश अपने समय स्थितियों और अंतर विरोधों की आलोचना करते हुए लिखी जाती रही है। 9वां दशक इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है कि कहानी रोमानी क्रांतिकारिता और रूढ़ जनवाद से पृथक होकर जीवन की वास्तविकताओं और बदल रहे यथार्थ को उसकी परिवेश जन्य संश्लिष्टता में ग्रहण करती है। आलोचनात्मक यथार्थवाद एवं समाजवादी यथार्थवाद से भिन्न कथा साहित्य में जादुई यथार्थवाद की अवधारणा नई पद्धति की तरह प्रचलन में आती है। फैंटेसी का प्रयोग कथा साहित्य में नया नहीं है, प्रकारांतर से होता रहा है, पर जादुई यथार्थवाद की चर्चा कहानी में तब नई नई ही थी। 9वें दशक में इस पर बहस की शुरुआत पंकज बिष्ट की बच्चे गवाह नहीं हो सकते और उदय प्रकाश की टेपचू दरियाई घोड़ा और अंतरिक्ष कहानियों से होती है। जादुई यथार्थवाद एक कथा पद्धति भी है और शिल्प का नया प्रयोग भी। वस्तुतः इसका तात्पर्य कहानी की ऐसी शैली से है जिसमें लोक कथाओं, मिथकों और दंत कथाओं की तर्ज पर चमत्कार, पुनर्जन्म, अंधविश्वास, जादू टोना, अफवाहों, किंवदंतियों, पारलौकिक घटनाओं, धर्म कर्म और लोक आस्थाओं के तत्वों का अवलंब लेकर यथार्थ को रचनांतरित किया जाता है। इन तत्वों का खंडन या मंडन कहानीकार का ध्येय नहीं होता, ध्येय तो यथार्थ ही होता है। ये तो कहानी के प्रयोग का उपकरण होते हैं। प्रभाव समझ और संस्कार से आए तो आरोपों के दायरे से बाहर होना चाहिए। फैंटेसी के लिए अभ्यस्त हिंदी कहानी के लिए सन 80 के बाद बदल रहे समय और यथार्थ के उद्घाटन में जादुई यथार्थवादी शैली के प्रतिष्ठित कहानीकार के रूप में उदय प्रकाश चर्चित हुए। यहाँ संकलित उनकी दृश्य कहानी इस शिल्प की महत्वपूर्ण कहानी है। अपनी मूल संवेदना में यह कहानी आधुनिकता की अंधी दौड़ में शहरी समाज की संवेदनहीनता और अमानवीयता को ग्रामीण उदात्त मूल्यों के समानांतर उद्घाटित करती है। स्वभावतः गांव की अपनी सहज मानवीयता के पर्याय रहे हैं और गांव अपनी सहज मानवीयता के पर्याय रहे हैं और शहर अपेक्षाकृत भय के जन्मदाता। कहानी के पिता शहर की इसी भयवादी स्वरूप से आक्रांत है। तिरिक्ष जो इस कहानी में शहरी सभ्यता के दुष्चरित्र का प्रतीक बनकर आया है, इसके माध्यम से कहानी अपने अभिप्राय की सार्थक और सफल अभिव्यक्त करती है। वाचक पहले कथा के पिता से अंतरंग है, फिर तटस्थ हो जाता है, इसके बावजूद शहर के आतंक का अनुभव कराने में कहानी सक्षम है। इस कहानी के बारे में कथाकार राजेंद्र यादव ने लिखा है, कहा हमारी लाचारी के चलते तिरिक्ष अपनी सारी कलात्मक प्रभविष्णुता बौद्धिक चुनौतियों के साथ हमें एक ऐसी अस्तित्ववादी खौफ या आतंक को समझने की दृष्टि देती है जो लगभग नियतिवादी असहायता में हमें लात छोड़ता है, क्योंकि पिता को मारने वाला शहर लगभग बेचेहरा प्रेतों का हुजूम है, ठीक तिरिक्ष के जहर की तरह अदृश्य, तरल और सर्वव्यापी। हंस, सितंबर 1987। तिरिक्ष एक विषैला जंतु है जिसके काट लेने पर मृत्यु अवश्यंभावी है और इस जंतु के बारे में अनेक लोक विश्वास प्रचलित हैं। उसके काटने को लेकर प्रत्येक लोक विश्वास का उनकी ही अवधारणाओं में निहित बचने के तर्कों का समाधान कहानी में पिताजी की घटनाओं के साथ हो जाता है। जैसा कि सामान्यतः लगता है कि पिताजी की इतनी प्रताड़ना के पश्चात अंततः मृत्यु का कारण तिरिक्ष का जहर है, जबकि कहानी में तमाम सूचनाओं और घटनाक्रम का संकलन मृत्यु के वास्तविक कारण की खोज है। कुछ लोगों ने इसमें आपातकाल के आतंक का आभास भी परिलक्षित किया है, जिसका अंदाजा संभवतः वाचक के स्वप्न में बार बार भयाक्रांत और बेचैन हो जाने तथा कहानी में आई तिथियों की सूचना से लगता है। उदय प्रकाश ने कहानियों खासतौर से लंबी कहानियों के विन्यास में अनूठे प्रयोग किए हैं। वे और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, वारेन हेस्टिंग्स का सांड और मोहनदास जैसी कहानियों से पाठकों को अचंभित करते हैं। अकारण नहीं कि उन्हें समकालीन कहानी की अंतर्वस्तु और रूप में असाधारण बदलाव लाने का श्रेय सर्वाधिक उन्हें है, बावजूद इसके कि उन पर आरोप लगाने वालों की कमी नहीं। दरअसल उन्होंने कहानी में यथार्थ की भाषिक और शिल्पगत पुनर्रचना कर भारतीय कथा की समृद्ध विरासत का आख्यानात्मक विस्तार संभव किया है। उदय प्रकाश 9वें-10वें दशक के सर्वाधिक समर्थ कहानीकार हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कहानियों के प्रयोगों से समकालीन यथार्थ की चुनौतियों को अंगीकार किया है। तिरिक्ष उनमें से एक उल्लेखनीय और कहानी में सर्वथा नई और सचेत रचना धर्मिता का अभिन्न उदाहरण है। उदय प्रकाश अपनी कहानियों को लेकर उठे विवादों को लेकर नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिंदी कहानी के नवीनतम युवा पड़ावों के प्रस्थान सूत्र प्रायः उनकी कहानियों से जोड़े जाते हैं। उन्होंने नए युवा कहानीकारों की अंतश्चेतना को गहराई से प्रभावित किया है। अब यही कहानीकार हिंदी कहानी की अगली मंजिल का पता लिख रहे हैं। हमने यहाँ कहानीकारों और संकलित कहानी को हिंदी कहानी की गतिशील परंपरा के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है। यह करते हुए प्रस्तावना निबंध के शिल्प में कुछ छूट भी ली गई है, ताकि विद्यार्थी वर्ग के लिए संकलन पठन और अनुबोध या अध्ययन के किसी बिंदु पर अधिक उपयोगी और सहायक बन सके। अंत में यह कहना है कि किसी कहानी पर हमारी उक्त धारणाओं या मान्यताओं से विद्यार्थी या पाठक सहमत ही हो जरूरी नहीं। यह तो सिर्फ कहानियों को पढ़ने और उनके साथ चलने के दिशा संकेत हैं कि आप अपनी स्वतंत्र या मौलिक धारणा खुद भी बना सकें। नीरज खरे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग, वाराणसी, दशहरा 17 अक्टूबर 2010।